मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 22 जून 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्रेमचंद पटना बिहार से, इंद्र मोहन अमांडा सिंह इनका गांव है पूंजिया जिला छपरा बिहार से, अमन गोयल आपका कस्बा है सीतापुर जिला है सरगुजा छत्तीसगढ़ से, गौरव सावो पुरलिया पश्चिम बंगाल से, राहुल प्रजापत उदयपुर राजस्थान से और संजना पारेता ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो प्रेमचंद, इंद्रमोहन, अमन, गौरव, राहुल और संजना आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों हर शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं और वो सूचनाएं हर शुक्रवार को एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें दोहराना चाहूंगा। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि अभी आपको पढ़ने को मिल रही हैं। साथ ही शनिवार को आपको योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल मिलेंगे। इसमें से 2 हिंदी के होंगे, 2 इंग्लिश के होंगे, 2 योजना से होंगे या 2 कुरुक्षेत्र से होंगे। इसी के साथ ही आपके अभ्यास के लिए एक वीकली क्वेश्चन, साप्ताहिक प्रश्न जो मेन्स के पैटर्न पर होता है वो आपको उपलब्ध कराया जाता है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाता है। मित्रों ये कुछ सूचनाएं थी। आज मुख्य विषय के रूप में फ्रेंड्स हम ट्रेड वार, जिसे आप व्यापार युद्ध कह सकते हैं, व्यापारिक युद्ध कह सकते हैं, उस पर कुछ बातें करेंगे। लेकिन देखिए क्योंकि आज बातें करने के लिए बहुत सी बातें हैं तो उस पर हम लोग कितनी बात कर सकेंगे देखते हैं, अदरवाइज फिर आगे कभी उसे दोहराएंगे। मित्रों कुछ चीजें मैं आज आपसे थोड़े से अलग तरीके से बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो राज्यपाल शासन लागू हुआ है इसके बारे में मुझे कुछ मेल मिले हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि जम्मू कश्मीर में बेसिकली राज्यपाल शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन नहीं है ना। दो बाकी जो स्टेट है वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को हमारे संविधान में एक स्पेशल दर्जा दिया गया है और उनके लिए अनुच्छेद 370 की अलग से व्यवस्था भी की गई है हमारे संविधान में, तो इसीलिए वहां राज्यपाल शासन होता है। लेकिन प्रक्रिया बहुत कुछ जो है वो यही है कि वहां के जो गवर्नर हैं वो रिपोर्ट भेजते हैं और उस रिपोर्ट को फिर जब राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं तो वहां फिर अनुशंसा कर देते हैं तो राज्यपाल शासन लागू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसके तहत नहीं होता, वो अपने आप में जो अनुच्छेद 370 के तहत का जो सेक्शन 92 है उसके तहत वहां राज्यपाल शासन लागू होता है। कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के उन्होंने मुझसे पूछा था। मैंने जहां तक है राष्ट्रपति शासन की बात की थी वो केवल इस आधार पर की थी कि आप ऐसे अवसर का कैसे उपयोग करेंगे और राष्ट्रपति शासन के बारे में कैसे अच्छी तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि एक अवसर मिल गया था और साथ ही 2018 के एग्जामिनेशन में इस तरह का प्रश्न आ भी गया था। तो प्रश्न जो आते हैं प्री में खासकर उन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे, उस संदर्भ में मैं राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा था। तो ये मित्रों आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इनफैक्ट वो तैयारी सिर्फ पढ़ने से नहीं होती है, ये मैं मित्रों बार बार आप सबसे कहता रहा हूं। तैयारी करने के लिए खासकर आईएएस के लिए यानी सिविल सर्विसेज के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, या यूं कह लीजिए कि परंपरा से जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं उनसे हट करके कुछ काम करने पड़ते हैं। और वो काम ऐसे हैं जो हमसे थोड़ी सी एक्टिविटीज की डिमांड करते हैं, हमसे थोड़ी सी सतर्कता की मांग करते हैं। और उसका कारण यह है क्योंकि जो करेंट अफेयर्स है उसका बहुत बड़ा रोल हमारे सिविल सर्वेंट बनने में है, बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए वो अतिरिक्त सतर्कता की मांग करता है। वो ये भी देखते हैं कि आप दूसरों से किस मायने में अलग हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी योगा की बहुत बात हो रही है, अगर आपने कल डीडी न्यूज देखा हो तो प्रधानमंत्री जी ने योगा पर एक संदेश जैसा दिया। अमेरिका में एक संस्थान का उद्घाटन हो रहा था तो वो उन्होंने एक संदेश दिया। आप ध्यान दीजिए कि वो योगा पर जब बात कर रहे थे तो उसके कितने डायमेंशंस को उन्होंने कवर किया है। ये नहीं कि योगा से बस ये फायदा है, कहां एक्टिविटीज हो रही है, किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, इसका दूसरे और क्या रोल हो सकते हैं, इन सब की चर्चा उन्होंने की। तो अगर योगा पर एक निबंध लिखना है और आप यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जी योगा पर एक निबंध बोल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने कितने पॉइंट्स कवर किए हैं। तो जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे। उदाहरण के तौर पर आज मैं आपको हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें जो योगा के बारे में है। अब इसमें आप देखें कि तीन पॉइंट आप इससे बहुत आराम से नोट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि किस तरीके से दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है KPMG, जहां लगभग 1,90,000 लोग काम करते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपने यहां बकायदे 3 दिन के योगा सेशन शुरू कर दिए हैं। और इसलिए क्योंकि पाया गया है कि उनके जो कर्मचारी हैं वो काम करने में बहुत गलतियां कर देते हैं, यानी कि वो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कर दिया है। तो देखिए योगा का एक इंपॉर्टेंस यहां आपको दिखाई दे रहा है कि वेस्ट कैसे स्वीकार कर रहा है। लेकिन इसी आर्टिकल में आप ये भी पाएंगे कि कुछ ऐसे कैथोलिक यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इसको बैन कर दिया, पहले कराते थे अब बैन कर दे, इसलिए कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ये वे ईस्ट की फिलॉसफी से संबंधित है, और अगर हम ऐसा कराएंगे तो हमारे लोग क्रिश्चियनिटी से विमुख होते जाएंगे। तो अब आप देखिए दोनों चीजें मिल रही है। तो अब एक उदाहरण है, बहुत ही लॉजिकल और फैक्चुअल उदाहरण है, अगर आप इसे कहीं नोट कर लेंगे तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि आप अपने योगा पर जो निबंध लिख रहे हैं उसे वजनी बना सके, दूसरों से अलग बना सके। तो मित्रों हमें यह करना ही पड़ता है कि हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं और उस पर फिर जो कुछ भी हमें चीजें मिलती चली जाती हैं उन्हें हम नोट करते जाते हैं और फिर रिवाइज भी करते जाते हैं। मित्रों इसके बाद एक खबर आपने आज के अखबारों में पढ़ी होगी, न्यूज में भी वो थी, और वो ये कि मानव अधिकार आयोग, इसके बारे में आपने सुना है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में आपने जरूर पढ़ रखा होगा। और इसका जो इसकी जो परिषद है, जो काउंसिल है, याद रखिए कि अमेरिका ने परिषद से त्याग पत्र दिया है ना, मतलब ये जो संस्था है यूएन जनरल असेंबली उससे त्याग पत्र नहीं दिया है, परिषद से त्याग पत्र दिया है। तो परिषद यू कह लीजिए कि एक बॉडी है, इसी मानव अधिकार जो संगठन है उसकी एक बॉडी है जिसमें 47 सदस्य होते हैं, 47 मेंबर्स होते हैं जिनको 3 साल के लिए चुना जाता है। और ये इनका फिर ये काम होता है कि पूरी की पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ये फिर अपने प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में भेजते हैं जहां इनको शिकायत मिलती है कि वहां मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर वो मंडल जाता है वहां से फिर रिपोर्ट ला करके सौंपता है, तो फिर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो इनका उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। अमेरिका ने यह ब्लेम किया है कि ये फालतू का हो गया है, ये बायस्ड हो गया है, और करके उन्होंने अभी परिषद से त्याग पत्र दे दिया है। तो एक घटना है, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है मानव अधिकार आयोग, अमेरिका मानव अधिकारों का बहुत बड़ा प्रवक्ता है, और नो डाउट कि सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के अभी तक अमेरिका ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत काम किया है, उसका नेतृत्व उसने किया है। अब स्थितियां ठीक है, थोड़ी सी बदल रही हैं, आप देख रहे हैं ट्रंप जी के आने के बाद, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मित्रों एक जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल कमेंट है मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो खासकर नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी चीन गए हुए हैं, और भारत और नेपाल के संबंध और नेपाल और चीन के संबंध, इस पर आपको बहुत तीखी नजर रखनी है, तीखी नजर रखनी है, इसलिए क्योंकि नेपाल में हमारे संबंधों को जो चुनौती मिल रही है वो चीन के कारण ही मिल रही है, और नेपाल के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन की तरफ झुकाव रखते हैं। बॉर्डर आप देखिए तो नेपाल चीन और भारत का बॉर्डर मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी सिलेबस में जो हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध है वो बहुत बकायदे आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा और इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूं ट्रेड वार पर, जिसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। देखिए ट्रेड वार क्या है, व्यापार युद्ध क्या है, व्यापारिक युद्ध यही है कि आपने पूरी दुनिया का बाजार एक हो सके, इसके लिए लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, वैश्वीकरण या उदारीकरण की शुरुआत की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया, WTO जिसे हम कहते हैं, ताकि वो दुनिया के व्यापार के बारे में नियम कानून बना सके, उसकी देखरेख कर सके और दुनिया में व्यापार स्वतंत्र रूप से हो सके। देखिए, दुनिया में व्यापार बाधित क्यों हो रहा था? वो संरक्षणवादी नीतियों के कारण। संरक्षणवादी नीतियों के बारे में इससे पहले मैं कई बार और बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं। खासकर मैं अपने क्लास स्टूडेंट को याद दिलाना चाहूंगा कि वो याद करें कि संरक्षणवादी नीतियों को बराबर बकायदे मैंने फार्मूला बनाकर कि यूं कह लीजिए मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके उन्हें समझाया था और डेली ऑडियो लेक्चर में भी समझाया था, तो उसको फिर से समझाने की तो जरूरत फिलहाल मैं कम से कम नहीं समझ रहा हूं। हुआ क्या है कि ट्रंप जब जैसे ही राष्ट्रपति बने, यार राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने एक नारा दिया था, अमेरिका अमेरिकियों के लिए, यानी कि जो अमेरिका देश है सबसे पहले हमें अमेरिका जो अमेरिकन्स जो हैं उनका ध्यान रखना, क्योंकि अमेरिका में भी प्रॉब्लम होने लगी थी बेरोजगारी की और दूसरी चीजों की। तो जैसे ही वो सत्ता में आए तो बट नेचुरल है कि अब वो ऐसे स्टेप ले रहे हैं ताकि अमेरिका के लोगों के हितों की रक्षा हो सके, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, उनकी इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़ सके। अब इसके वजह से हो ये रहा है कि अमेरिका बाहर से जो सामान आ रहा है उन पर उसने शुल्क लगाना शुरू कर दिया, यानी कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आपने देखा कुछ महीने पहले चीन से जो आने वाली वस्तुएं थी उन पर उन्होंने टैक्स लगाने की शुरुआत की, शुरुआत ही नहीं, बात तो बहुत पहले से करने उन्होंने शुरू कर दिया था। अब क्या है कि जब आप अपने यहां आने वाली चीजों पर टैक्स लगा देंगे तो आपके यहां वो चीजें महंगी हो जाएंगी, जब आपके यहां चीजें महंगी, बाहर की चीजें महंगी हो जाएंगी तो आपके यहां की चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो आपके यहां की चीजों को लोग खरीदने लगेंगे क्योंकि वो सस्ती हो रही है। तो जब आपके यहां की चीजें खरीदी जाएंगी तो आपके यहां उद्योगों में उनका उत्पादन होने लगेगा, सीधा सा गणित है। तो अब ये बहुत तेजी से होने लगा, चीन के सामान पर जब अमेरिका ने लगाया तो बदले में भारत, अमेरिका ने भी, चीन ने भी अमेरिका के सामान पर लगा दिया, वार हो गया ना, तुम हमारे सामान पर लगा रहे तो हम तुम्हारे सामान पर लगा रहे हैं, ठीक है। भारत के साथ भी ऐसा हो गया, जब भारत के सामान पर लगाया तो भारत ने भी निर्णय लिया कि हम भी अमेरिका के सामान पर लगाएंगे, तो भारत ने भी जो उसके स्टील, मतलब अमेरिका ने तो जो भारत से स्टील जाता था, जो एल्यूमिनियम जाता था, उस पर ड्यूटी बढ़ा दी, तो भारत ने भी बहुत सी चीजों पर ड्यूटी बढ़ा दी, जैसे चना है, बादाम है, अखरोट है, सेब है, इन सब चीजों पर उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी। जैसे कि अखरोट पर 30% था तो भारत ने अब उसको 120% कर दिया, चना पर भी 30% था तो उसको बढ़ा के 70% कर दिया। तो अब बट नेचुरल है कि इन चीजों का आयात हमारे देश में कम हो जाएगा अमेरिका से, क्योंकि उन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन भारत को भी नुकसान होगा क्योंकि जो जिस पर ड्यूटी अमेरिका ने लगाए है तो वो चीजें अमेरिका में को हम निर्यात नहीं कर सकेंगे। तो लगभग कैलकुलेट किया गया है कि जो सालाना आयात है उसमें काफी प्रभावी, काफी नुकसान होगा। लेकिन मित्रों, इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है। दूसरा पक्ष ये होता है कि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हमारे अपने जो उद्योग हैं वो तेजी से आगे बढ़ें क्योंकि हमारी अपनी वस्तुएं बिक पाएंगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो भारत को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा अर्थशास्त्री मानते हैं। जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा अमेरिकियों का लगा हुआ है तो उस पर फर्क आ सकता है, यहां तक कि हमारे देश में जो निवेश आ रहा है, अमेरिकन निवेश आ रहा है, उस पर असर पड़ सकता है। तो ये इसी को कहा जाता है ट्रेड वार, कि तुम हमारे ऊपर शुल्क लगा रहे हो तो हम बदले में तुम्हारे ऊपर शुल्क लगा रहे हैं, और अमेरिका इस मायने में आप कह लीजिए कहीं ना कहीं अलग थलग भी पड़ता जा रहा है। यूरोपीय समुदाय भी अब अमेरिकन चीजों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट प्रतिबंध यहां नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ट्रेड वार चलता रहा तो फिर जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं, जिसे हम खुला बाजार कहते हैं, उसका क्या होगा? डेफिनेटली उसका जो अस्तित्व है अब धीरे धीरे संकट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स दे रहा हूं मित्रों, बिजनेस स्टैंडर्ड की, जो खासकर ऊर्जा के ऊपर है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पर आप एक छोटा सा नोट भी जरूर बनाकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स है। तो दोस्तों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सोनू इलाहाबाद से, विवेक राजू गायकवाड़ पलवेल महाराष्ट्र से, पल्लवी कुमारी, शिवेंद्र मिश्रा, स्वाति रानी किरतपुर उत्तर प्रदेश से, पूजा एवं रीना राजस्थान से, रेखा द्रविड़, आयुष गुप्ता, प्रशांत सिंह, मानस झा दिल्ली से, और गुलशन गुप्ता। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा, और उससे पहले आप सबके लिए बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं कि बीच के दो दिन बहुत सुखद तरीके से बीतें। सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर आगे की बातें होंगी। नमस्कार।